आपके साथ बैठकर सोचने आया हूं, तो मैं कहूं और आप सुने, ये मेरी आपकी रिश्तेदारी नहीं। मैं कहूंगा और आप मेरे साथ साथ सोचे। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है, निवेदन इतना ही है कि उस सब को आप यथार्थ न माने। एक बात अपने परिचय में मैं कह देना चाहता हूं कि मैं कोई विचार रखता नहीं हूं, विचार करता हूं। विचार रखने में और विचार करने में बहुत बड़ा अंतर है। जो विचार रखा जाता है उसमें से प्रवाह बंद हो जाता है, उसमें सजीवता नहीं रहती, वो संगठित हो जाता है और जम जाता है। जमे हुए विचार को अक्सर लोग प्रचारित करते हैं। मुझे आप सबसे निवेदन यह करना है कि आप मेरे साथ विचार कीजिए। विचार को कोई विशेषण न दीजिए। विचार न गांधी का है, न मार्क्स का है, न कृष्ण का है, न बुद्ध का है, न महावीर का है। विचार विचार है, वो निरुपाधिक होना चाहिए, उसके पीछे कोई विशेषण नहीं होना चाहिए। मैंने इसीलिए आज अपने भाषण के लिए विषय सुझाया था सम्यक दर्शन। सम्यक शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो उचित होना चाहिए, दूसरा असंदिग्ध होना चाहिए और तीसरा समग्र होना चाहिए। ये सम्यक के लक्षण है। और दर्शन का अर्थ आज तक तत्व ज्ञान फिलॉसफी से किया गया। फिलॉसफी और तत्व ज्ञान असल में दर्शन नहीं है। वस्तु का हमारे चित्त पर जो प्रभाव होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तज ज्ञान और तत्व ज्ञान दो अलग चीजें हैं। तज ज्ञान वस्तु को देखता है, परसेप्शन जिसे कहते हैं, वो दर्शन है। लेकिन आजकल हम दर्शन का अनुवाद फिलॉसफी से करते हैं। ये जो फिलॉसफी है अलग अलग है सब जगह। इट्स ए मेज ऑफ ब्लाइंड एलीज एंड डेड एंड स्ट्रीट्स लीडिंग फ्रॉम नोवेयर टू नथिंग। ऐसी एक भूल भुलैया है जिसमें अंधी गलियां हैं और ऐसे रास्ते हैं जो कहीं नहीं ले जाते। नतीजा यह है कि आज मनुष्य खो गया है ऑन द रोड टू नोवेयर, स्ट्रैंडेड ऑन द रोड टू नोवेयर। उसे पता नहीं है कहां जाना है। दर्शन में से आत्मा खो गया है, धर्म में से ईश्वर खो गया है और मनोविज्ञान में से मन खो गया है। इसलिए अब नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। लोगों को विचार देने की आवश्यकता नहीं है, विचार करने के लिए उद्युक्त कराने की आवश्यकता है। तो मैं जीवन के कुछ क्षेत्रों के विषय में इस सम्यक दर्शन का विनियोग आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं अब 60 साल से ऊपर हो गए भाषण करता आया हूं, अब मैं भाषण नहीं करता, बात करता हूं। और बात कभी खत्म नहीं होती, इसलिए जब ये सोचता हूं कि अब इसे बंद कर देना चाहिए तो बंद कर देता हूं। बात खत्म नहीं होनी चाहिए, भाषण अलग चीज है और बात अलग चीज है। बात मनुष्य से होती है, एक मनुष्य हो, 10 हो, 50 हो। आज मनुष्य खो गया है, संख्या में खो गया है। एक दफा रोटरी की एक सभा में गया था, उन्होंने अपना प्रतिवृत्त रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा था कि औसत उपस्थिति 81.5 सदस्य थी। अब मैं हैरान था कि ये आधा सदस्य कैसे आया होगा, ये कौन होगा, एक मैथमेटिकल फिक्शन है। हिसाब में मनुष्य केवल अंक बन जाता है। एक दुर्घटना हो जाए, 100 आदमी उसमें मर गए, मेरे लिए सिर्फ आंकड़ा है, अंक है। उन 100 में अगर मेरा कोई स्वजन है, सगा संबंधी है, बेटा है, भाई है, दामाद है, पोता है, तो मेरे लिए फिर वही एक 100% हो जाता है। वो इंटीजर है, होल नंबर है, पूर्णांक है। तो आज हम किस स्थिति में अपने को पाते हैं, हमारी आंख अब साबित नहीं रही है, अपनी आंख नहीं रही है, उधार की आंख से हम देखते हैं। और बर्नार्ड शॉ से कहा था ना, उसे चश्मा नहीं लगता था, तो डॉक्टर ने लिख कर दिया कि तुम्हारी आंख नॉर्मल है। उसका मेरी नॉर्मल है तो फिर मेरी उम्र के ये सारे लोग जो चश्मा लगाते हैं, इनकी क्या आंख एबनॉर्मल है? उसने कहा साइंटिफिक नॉर्मल, वैज्ञानिक नॉर्मल, स्वस्थ आंख जो होनी चाहिए वो 2% आदमियों की होती है सिर्फ। तो मित्रों, जब हमको जीवन की तरफ देखना हो तो अपनी आंख से देखें और जीवन की समग्रता को देखें। उसने कहा था रूसो ने, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज फाउंड इन फेटर्स। मैं इसका अनुवाद पैराफ्रेज दूसरी भाषा में करूंगा, मैन वॉज बॉर्न होल बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन फ्रैगमेंट्स। बिखरा हुआ है मनुष्य, खंडित है, अखंड मानव कहीं है नहीं। बड़ा मजे का वर्णन एक शिक्षण शास्त्री ने किया, कहा कि मैं इंस्पेक्शन करने गया था, निरीक्षण मुआयना करने गया था, क्या देखा? आई सॉ ए फ्रेगमेंट ऑफ ए टीचर टीचिंग ए फ्रेगमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट टू ए फ्रेगमेंट ऑफ ए प्यूपिल इन ए फ्रेगमेंट ऑफ टाइम। और इसका नाम बहुत रख दिया है, ये विद्वानों का एक तरीका है, नाम ऐसा रख देते हैं जो यूफेमिस्टिक होता है, सुनने में बड़ा मधुर लगता है। यू इसका नाम है स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। वो 4 आदमियों का किस्सा सुनाया था मास्टर साहब ने लड़कों को, हाथी देखा उन्होंने, और किसी ने कहा मूसल की तरह, किसी ने कहा रस्सी की तरह, किसी ने कहा खंभे की तरह है। तो मास्टर साहब ने पूछा वो कौन थे। अब परंपरागत जिन लोगों ने सुना था लड़कों ने कह दिया वो अंधे थे। एक लड़का कुछ होशियार था, उखड़ा हो गया कि मैं दूं इसका जवाब, का दो क्या जवाब है। वो सब स्पेशलिस्ट थे, पूरा हाथी वो कभी देखते ही नहीं थे। तो मैंने कहा ना आपसे कि उसमें होलिज्म, आजकल एक शब्द निकल गया होलिज्म, समग्रता, समग्रता होनी चाहिए दर्शन में, जीवन का खंड दर्शन नहीं, अखंड दर्शन, संपूर्ण जीवन का असंदिग्ध, उसके विषय में शक नहीं, संदेह नहीं, प्रश्न हो सकते हैं। तो डेनिसन ने बड़ी मजे की बात कही थी, देयर इज मोर ट्रूथ इन ऑनेस्ट क्वेश्चन देन इन ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टेकन टुगेदर, पुट टुगेदर। तो जो जिज्ञासा है, ऑनेस्ट क्वेश्चन, परिप्रश्न, परिप्रश्न अलग चीज है, संशय संदेह बिल्कुल अलग चीज है, ये स्केप्टिसिज्म नहीं है। जैनियों में बड़ा सुंदर शब्द है स्यादवाद, अनेकांतवाद, आग्रह नहीं है बुद्धि में, ओपन माइंड है, लेकिन निष्ठा है, उसके बारे में संशय नहीं है, संदेह नहीं है। तो असंशय, निसंदिग्धता और समग्रता, पूरा जीवन का दर्शन होना चाहिए। लेकिन हम कैसे हैं, वी आर ऑल शॉर्ट साइटेड, अल्पदर्श दृष्टि है हमारी, किसी भी वस्तु की सारे पहलू हम देख नहीं सकते हैं, एक आध दो पहलू ही देख पाते हैं। लेकिन हम तो ऐसे हो गए हैं, सिर्फ अल्प दृष्टि नहीं है, स्क्विंट आइड है, हमारी दृष्टि तिरछी है, टेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी भी नहीं है। और जो स्पेशलिस्ट हैं उनके तो ब्लिंकर्स हैं, अंधेरियां लगी हुई हैं। तो मैं हर विषय को अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, थोड़े मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन की व्याख्या न कीजिए, जीवन का कोई लक्षण नहीं, अनंत है। और व्याख्या क्या करती है, डेफिनेशन लिमिट्स, उसको सीमित कर देती है, उसको परिमित कर देती है। जीवन व्यापक है, केवल विशाल नहीं है, केवल विराट नहीं है, व्यापक है। उस जीवन को हम सीमित न करें, फिर वो जीवन व्यक्त कैसे होता है, वो होता है मनुष्यों के संबंधों में। संबंध ही जीवन है, जहां संबंध नहीं है वहां जीवन नहीं है। अब क्या मनुष्यों के संबंध हैं आजकल? संबंध के विषय में एक बात कह दूं, वो निरपेक्ष निरुपाधिक होना चाहिए, निरुपाधिक, जिसके कोई कारण नहीं, किसी कारण की आवश्यकता नहीं, कोई उपाधि नहीं, और निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं। ये जीवन का संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध आज मनुष्यों में रह गए नहीं गया है। लेकिन मेरी अपनी यह धारणा है कि भारतवर्ष को भगवान ने बनाया हो तो इसलिए बनाया कि यहां विविधताओं में मनुष्यों के संबंध स्थापित हों, विविधताएं रहें, लेकिन ये सारी विविधताएं परस्पराभिमुख हों, एक दूसरे की तरफ मुखातिब हों, इनका मुंह, इन सारी विविधताओं का मुंह एक दूसरे की तरफ हो, पीठ नहीं, जैसे हमारे देश में रही है। सारी दुनिया के सारे धर्म हमारे देश में, फिर भी मेरे सामने एक समस्या हमेशा रही है कि इनमें झगड़े क्यों होते होंगे, तनाव और तनाजे क्यों होते होंगे, संघर्ष क्यों होते होंगे। धर्म अगर मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को ईश्वर से मिलाने के लिए है, तो फिर ये सारे के सारे धर्मों में हमारे यहां एक समस्या है। तो गामाकोटि के शंकराचार्य जी ने सुब्रमण्यम को बुलाकर उनसे कहा कि यह प्रधान समस्या हमारे देश की है, क्या धार्मिक कलह समस्या हो सकती है। लेकिन धर्म जब संगठित हो जाता है तो उसमें उन्माद आ जाता है, धर्म का नशा और किसी मादक वस्तु से अधिक होता है जब वो संगठित हो जाता है, तब उसमें से ईश्वर गायब हो जाता है और शैतान उस सिंहासन पर आकर बैठ जाता है। सिंहासन पर जहां शैतान आरूढ़ होता है वहां संगठित धर्म होता है। इसलिए आज जो समस्या हमारे देश में है यह समस्या धार्मिक नहीं है, यह समस्या है सांप्रदायिक, कम्युनल, क्योंकि धर्म की कम्युनिटीज हैं, उनमें धर्म है नहीं। उपासना रहेगी, धर्म रहेगा, व्यक्ति धर्म का आचरण करेंगे, उपासना करेंगे, उपासना पद्धतियां रहेंगी, व्यक्तिगत भी रहेंगी, सामुदायिक भी रहेंगी, लेकिन उनके समाज नहीं बनेंगे। आज उनके समाज हैं, उनके दो लक्षण हैं। एक लक्षण तो यह है कि हिंदू झूठ बोलने पर भी हिंदू रहता है, मुसलमान झूठ बोलने पर भी मुसलमान ही रहेगा, और ईसाई झूठ बोलने पर भी ईसाई रहेगा। तो इसका क्या परिणाम क्या निकला, निष्कर्ष यह निकला कि जिसे आप धर्म कहते हैं उसमें से ईश्वर को, सत्य को, ईमान को, नैतिकता को हटा दीजिए, फिर जो बच जाता है उसका नाम धर्म है। और यह समाज है, संगठित समाज है। धर्म परिवर्तन, समाज परिवर्तन होता है, और वो सारा का सारा प्रश्न परिणत हो जाता है संख्या के प्रश्न में, प्रोसिलिटाइजेशन होता है। धर्म परिवर्तन कराया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है। इसमें से संप्रदायवाद पैदा होता है, कम्युनलिज्म। तो क्या उपाय है, प्रयत्न हुए इस देश में, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया, रामकृष्ण विवेकानंद ने किया, रामकृष्ण विवेकानंद ने, रामकृष्ण श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने तो सारे धर्मों का अनुष्ठान अपने जीवन में किया। उसके पास उसके बाद गांधी आया, सामुदायिक प्रार्थना में ईश्वर अल्लाह आए, सर्वधर्म की प्रार्थना आई, सर्वधर्म समन्वय आया, उसके बाद सर्वधर्म समभाव आया, आगे चलकर विनोबा ने सारे धर्मों के सभी ग्रंथों का, संप्रदायों का अध्ययन निष्ठापूर्वक किया, भक्तिपूर्वक किया, और उनके सार को निकाल कर रख दिया। लेकिन इतने से आपने देखा कि धार्मिक कलह और धार्मिक संघर्ष बंद नहीं हो सके। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और मेरे सारे नतीजे जैसा मैं शुरू कह चुका हूं टेंटेटिव हैं, तात्कालिक हैं, उनका विकास हो सकता है, लास्ट वर्ड होता ही नहीं है विचार में और होना भी नहीं चाहिए। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब दुनिया में संगठित धर्म नहीं रहना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज डिनोमिनेशन, जो संगठित धर्म होता है उसी का नाम संप्रदाय है, उसके समाज बनते हैं, इन समाजों की दीवारें होती हैं, उनमें ईश्वर नहीं रह सकता। तो अब सर्वधर्म समन्वय नहीं, सर्वधर्म समभाव नहीं, एक ही धर्म, बहुवचन में धर्म नहीं, अनेक वचन। सारे धर्म अगर परस्पराभिमुख होंगे तो विनोबा जैसे करते हैं, कुरान को भी मान सकते हैं, बाइबल को भी मानते हैं, अवेस्ता को भी मानते हैं, फिर भी वो न हिंदू न मुसलमान कोई उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। ऐसा निरुपाधिक मानव, इंटीग्रेटेड, ये समवादी मानव। हमारे यहाँ समवादी मानव की दो विभूतियां हैं हमारे पुराने साहित्य में, एक है श्री कृष्ण, कोई मर्यादा ही नहीं, नो इनहिबिशन, कोई बंधन नहीं, कोई विधि विधान नहीं, विधि निषेध नहीं, और दूसरा शिव, स्मशान में भी जीवन के बीज बोता है, उसे अर्धनारीश्वर कहा। और मूर्ति बनाते हैं तो आधे में पार्वती को बनाते हैं और आधे में शिव को बनाते हैं, कैरिकेचर है ये, उसका असली, उसकी असली मूर्ति या नहीं, प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा क्या होनी चाहिए कि पार्वती में शिव ओतप्रोत है और शिव में पार्वती ओतप्रोत है, यह संवादी मनुष्य है, यह इंटीग्रेटेड मनुष्य है। इस इंटीग्रेटेड मनुष्य का इंटीग्रेटेड धर्म होगा, संवादी धर्म। निवेदिता ने एक दफा लक्षण बतलाए भारतीयता के, कृष्णमूर्ति ने मुझसे अनेक बार एक सवाल किया था, सर इज देयर एन इंडियन माइंड, क्या कोई भारतीय मानसिकता भी है? तब से मैं खोज करने लगा, तो निवेदिता में जवाब मिला मुझे। उसने कहा कि तीन चीजें हैं जो भारतीय की, भारतीयता की विशेषता है। एक तो सिंथेसिस है, समन्वय, दूसरा हार्मनी है, संवादित्व, और तीसरा कोऑर्डिनेशन, संगतीकरण। जो असंगत है उसको भी, उसमें भी संगति को खोजना, इसे मैं शुभ दर्शन कहता हूं। मित्रों, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, जीवन परक है। मैंने दो बातें आपसे कही, एक वस्तु है, वस्तुनिष्ठ दर्शन है, और दूसरा जीवननिष्ठ दर्शन है। जीवननिष्ठ दर्शन अवस्तु में वस्तु को देखना चाहता है, जो वस्तु आज जैसी है वैसी नहीं, जैसी होनी चाहिए, यह स्वप्न दृष्टा होता है। और स्वप्न एक बड़ी दिव्य वस्तु है जीवन में। अगर स्वप्न न हो मनुष्य के जीवन में तो जीवन का सामना नहीं कर सकता। लेकिन स्वप्न दिव्य स्वप्न हो, जीवन का स्वप्न हो, तो इस क्षेत्र में जीवन के बस एक ही बात कहूंगा, इससे आगे इसको नहीं बढ़ाऊंगा, कि आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि जो स्वप्न हम देखेंगे उस स्वप्न में मनुष्य एक होगा, कोई विशेषण नहीं, निरुपाधिक मानव। और ये क्षितिज ही उसकी चार दीवारी होगी। आज हो रहा है, यहां अकाल होता है तो दुनिया के दूसरे कोने से सहायता आती है, कहीं भूकंप हो जाता है तो सारी दुनिया से सहायता आती है। विज्ञान ने कुछ गलत काम भी किए हैं, लेकिन एक बड़ा भव्य काम किया है कि मनुष्य को मनुष्य के सामने निकट लाकर रख दिया है। और निकट लाकर जो मनुष्य, दो मनुष्य सामने आ जाते हैं तो दो ही काम हो सकते हैं, एक तो लड़ेंगे या मिलेंगे, क्योंकि लड़ने के लिए भी परिचय होना चाहिए, जहां परिचय न हो वहां लड़ाई भी नहीं हो सकती। निकटता के बिना संघर्ष नहीं हो सकता। तो अब मनुष्य मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो गया है, सवाल इतना ही है कि अब कुश्ती होगी कि आलिंगन होगा। कुश्ती नहीं, आलिंगन होगा, और वो भारतवर्ष में शुरू होगा। ये भारत की नियति है, ये भारत की भूमिका है। दूसरा क्षेत्र है जीविका का, जीवन, उपजीवन और संजीवन। तीन क्षेत्रों का थोड़े में विचार आप लोगों के सामने रखूंगा और इसे बंद कर दूंगा अपनी बात को। उपजीवन, जीविका, लिविंग हुआ, अब लाइवलीहुड। लाइवलीहुड में भयानक सिद्धांतों का हमने स्वीकार कर लिया है। और पहला सबसे भयानक सिद्धांत यह है कि काम का संबंध उपभोग से होगा। इतना भयानक सिद्धांत दुनिया में कभी आया ही नहीं था। अपूर्व है लेकिन सबसे भयंकर है। जितना काम उतना उपभोग। असल में दुनिया के किसी क्रांतिकारी ने इसको नहीं माना है, लेकिन अब तक दुनिया में ये चल रहा है। आप अपने घर में कभी ऐसा करेंगे, मकान में कभी ऐसा होगा कि जो जितना काम करता है उतना खाए? कभी होगा ही नहीं। ये जेल में होता था, हर एक के छह छह रोटियां, कम खाओ तब भी पेशी, ज्यादा मांगो तब भी पेशी। ये जो इसे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, रेजिमेंटेशन। पसीने की रोटी खाता हूं जो कहता है, वो किसी जमाने में उसका कहना उपयुक्त रहा होगा, निरर्थक। पसीने का काम, श्रम का संबंध उत्पादन से है, उपभोग से नहीं। श्रम से उत्पादन होगा, उपभोग आवश्यकता। जितनी आवश्यकता होगी उतना उपभोग। लेकिन ये प्रतिमूल्य का सिद्धांत, आसुरी सिद्धांत। असुरों में भी वो ये करते नहीं है, हमने जीवों ने स्वीकार कर लिया है। काम के कभी दाम हो सकते हैं? आप मुझे सोचो, मैं समझना चाहता हूं, किसी काम का कोई दाम हो सकता है? ये जो प्राइस टैग है हर चीज पर, हमारे धर्म पर, हमारी कला पर, हमारे साहित्य पर, हमारी विद्या पर, सब पर एक प्राइस टैग है, कीमत लगी हुई है, कीमत की चिपकी। क्या काम के कोई दाम हो सकते हैं? एक प्रसंग मुझे याद आता है, नर्मदा जी में तैरने गया था, छोटा था, डूबने लगा। एक मल्लाह था नाव वाला, उसने मुझे बचा लिया। लेकिन तैरते वक्त धारा कुछ जोरों की थी, प्रवाह लेकिन मेरे दुर्भाग्य से एक दिन वो मल्लाह मेरी धोती लेकर आया। पिताजी ने पूछा, धोती तुझे कैसे मिली? कहीं ऐसा ऐसा हुआ था, तो उनको पता चला तो उन्होंने उसको 50 रुपए दिए इनाम। तो उसने जो सवाल पूछा, हम जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं। कहा, हुजूर ये 50 रुपए किसकी जान की कीमत है? मेरी जान की कीमत है, आपके बेटे की जान की कीमत है? आप मुझे बताइए, इसका कोई प्रतिमूल्य हो सकता है? इसका कोई बदला हो सकता है? इसका बदला एक ही हो सकता है, किसी दिन मैं डूबता हूं और आप मुझे बचा लें। ये तो आप चाहेंगे नहीं। ये प्रतिमूल्य का अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र, और ये हमारे देश में, सारी दुनिया में आज चल रहा है। इसलिए द होल वर्ल्ड इज टॉप्सी टर्वी, औंधी दुनिया में हम रह रहे हैं। तो बर्ट्रैंड रसेल ने एक दफा कहा था, इट सीम्स टू मी दैट द डेविल मेड दिस वर्ल्ड व्हेन गॉड वाज नॉट लुकिंग। वो देख नहीं रहा था, तब दुनिया ये शैतान ने बना डाली। सब उल्टा है, आप देखिए। अब ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, मजदूरों के आंदोलन चलते हैं। मुझे बताइए, पैसा कभी कोई चीज बना सका है? और पैसा कभी कोई किसी चीज की जगह ले सका है? राजस्थान के मरुस्थल में आप पानी के लिए अगर तड़पते रहे हो, तड़पते रहे, 1000 रुपया आपकी जेब में हो, तभी पानी की जगह तो नहीं ले सकते। रुपया वस्तु को खरीद सकता है, वस्तु की जगह भी नहीं ले सकता और वस्तु को बना भी नहीं सकता। और फिर भी रुपया सबसे ऊपर है। इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग सही नहीं है, असम्यक है। गलत वस्तु को गलत जगह रखते हैं। रुपया खाया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता, पहना नहीं जा सकता। वो खरीद सकता है। और इसीलिए मित्रों, हमारे मंदिर दुकान है, हमारा घर दुकान है, हमारी विश्वविद्यालय विद्यापीठ दुकान है, सारा का सारा मार्केट ओरिएंटेशन है आज के मनुष्य। आज मनुष्य का बाजार उपन्य संस्कार है। जो बनाता है वो मोहताज है, अन्न उपजाने वाला मोहताज है। मेरा पोता एक जूता लाया, 100 रुपया उसकी कीमत है। जिसने बनाया वो पहन नहीं सकता। बनाने वाला कहीं है ही नहीं। जो असल में विधाता है, सत्ता संपत्ति शस्त्र का बोल वाला है, लेकिन औजार जिसने इन सब को बनाया है, शस्त्र को बनाया है, संपत्ति को बनाया है, सत्ता को खड़ा किया है, A breath can make them as a breath has made. Goldsmith कहता था ना कि एक सांस में ये बने एक सांस में बिगड़ सकते हैं. But a bold peasantry, their country's pride, once destroyed can never be supplied. वो अगर एक दफा खत्म हो जाए तो फिर उसके उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है. तो मित्रों औजार की सत्ता होगी. सत्ता और संपत्ति और शस्त्र की जगह आप अहिंसा हिंसा वगैरह की भाषा छोड़ दीजिए. ये व्यर्थ के वाद है. गांधी बुद्ध ईसा महावीर इन सब की अहिंसा उनके साथ जाने दीजिए. आप मेरे साथ सोचिए कि दुनिया में हथियार की सत्ता चाहिए कि औजार की सत्ता चाहिए. औजार जीवन देता है, हथियार जीवन छीनता है. और ये औजार ही हथियार को बनाता है. सत्ता औजार की होनी चाहिए. इसमें क्या बात है, कौन सी चीज हिंसा अहिंसा वगैरह की बात है. अहिंसा को आप अगर सिद्धांत बनाएंगे तो अहिंसा के लिए युद्ध होंगे, जैसे आज ईश्वर के नाम पर होते हैं. मेरे जीवन में मैंने ये देखा है, हमारी सभाओं में गांधी की अगर कोई अहिंसा के खिलाफ बोलने लगता था तो हम उसकी जीभ छीक निकाल लेने के उतार लेने के लिए तैयार हो जाते. अहिंसा के खिलाफ बोलता है बर्ट एंडरसन ने तो किताब ही लिख दी है इसको कि दो राष्ट्रों में युद्ध ही हो गया था अहिंसा के. सिद्धांत मत बनाइए. जीवन में जो वस्तु सिद्धांत बन जाती है वो जीवन में से निकल जाती है, उसका विनियोग जीवन में नहीं होता. मेरे साथ इस बात को सोचिए कि यह क्या होगा. आज जिस युग में हम रह रहे हैं, ग्लैमरस कॉमर्शियलिज्म, दुकानदारी, आक्रोशकारी व्यापार का युग है. सब चीजों का व्यापार, ईश्वर का, भगवान का व्यापार, इंसान का व्यापार, सबका व्यापार ही व्यापार हो रहा है. और खेल का भी व्यापार. लाइफ, लाइवलीहुड, जीवन, उपजीवन, और अब मैं अंतिम चीज पर आ रहा हूं, रिक्रिएशन, संजीवन. खेल सबसे आध्यात्मिक वस्तु है जीवन में. खेल से पारमार्थिक कोई अधिक चीज है ही नहीं जीवन में. एक ही जगह ऐसी है मनुष्य के जीवन में, खेल, जहां वो प्रतिपक्षी को भी खोजता है. जेल में हमारे साथी ब्रिज खेलने बैठते थे कई बार. अब मुझे तो खेलना आता नहीं था ताश, वो ब्रिज, तो कहते थे कि तुम आओ भाई, सो मत, तुम्हारे साथ बैठो. तो क्या करूं, हमारे खिलाफ खेलो. विरोध में खेलने वाला भी खेल में प्लेमेट होता है, प्ले फेलो होता है. असल में यह डेमोक्रेसी है. लोकतंत्र एक ही तंत्र दुनिया में ऐसा है जिसमें विरोधी भी उसका हिस्सा होता है, तंत्र का हिस्सा. यह खेल है. आज जो हो रहा है यह खेल नहीं है. इसमें प्रतिस्पर्धा है, इसमें होड़ है. यह हो रहा है यह खेल नहीं है. खेल कब होगा जब इसमें से होड़ समाप्त हो जाएगी. दो टीम्स हैं लेकिन वो दोनों मिलाकर एक टीम है. दोनों को मिलाकर खेल होता है. इसीलिए खेल में जो हार जाता है उसकी जय बोली जाती है, थ्री चीयर्स। अब हम लोगों ने उसका अर्थ ये कह दिया थ्री चीयर से हारना हैप्पी बर्थडे हो गई, ऐसी बात नहीं है। जो हारता है उसकी जय बोलते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं। हार जीत ये हिसाब बाजार का है, हार जीत हिसाब सत्ता के केंद्र का है, दरबार का है। हार जीत खेल के मैदान की चीज नहीं है, वहां खिलाड़ी की तबीयत है। इस तरह मित्रों जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अगर हमारा दर्शन सम्यक है और विजन सिर्फ दर्शन ही नहीं, परसेप्शन ही नहीं, तो यहां पर हमारा विजन जिसे हम विस्टा कहेंगे, जो सपना हम देख रहे हैं वो सपना भी उतना ही दिव्य भव्य होना चाहिए। सपने देखे गए, आज जो सपना था कल वो सत्य हो गया, सच्चाई बन गया। सपना देखा होगा अनेक लोगों ने हमारे देश में कि एक दिन आएगा जब इस जमीन पर कोई राजा नहीं रहेगा। मेरे दादा से कोई कहता तो कभी नहीं मानते, आज एक दिन आ गया जब इस जमीन पर राजा नहीं है, एक भी जमींदार नहीं है एक भी। ये सपने यथार्थ होते चले जाते हैं, और सपने यथार्थ होते हैं तब इतिहास कृतार्थ होता है। अब तक इतिहास बनाया राजा ने, धर्म प्रवर्तकों ने, वीर पुरुषों ने, सेनापतियों ने, अब वो दिन आ रहा है, आना चाहिए, राउंड द कॉर्नर है, सामने है, वो दिन आने वाला है जिस दिन औजार जिसके हाथ में है वो इतिहास का विधाता होगा। ये सामान्य मनुष्य इतिहास का विधाता होगा, तभी मानवीय इतिहास का आरंभ होगा। तो मार्क्स ने कहा था ना कि तब मानवीय इतिहास का आरंभ होगा, अभी तो सब प्री हिस्ट्री है। मित्रों मैंने आपके सामने बैठकर आपके साथ अगर आप शामिल हो सके हो तो कुछ स्वप्न रंजन किया है। वो वाई बीट्स गाता था, होल्ड ऑन फास्ट टू योर ड्रीम्स फॉर इफ ड्रीम्स व्हेन ड्रीम्स गो लाइफ बिकम्स ए बैरन फील्ड। Which is frozen by the snow. इसलिए dreams को when dreams die, life itself becomes a broken winged bird which cannot fly. I am poor. I have only my dreams. I spread them under your feet, tread softly, because you are treading on my dreams. मेरे सपनों को कुचलिए नहीं, उन पर आराम से धीरे धीरे हल्के हल्के कदम रखिए। मनुष्य का जीवन जितना उन्नत होता है उतना दर्शन उन्नत होता है। जमीन खड़े पर जो खड़ा है उसका क्षितिज सीमित है, स्काई स्क्रेपर का खड़ा होगा और विशाल हो जाएगा, लेकिन हिमालय की चोटी पर खड़ा होगा तो क्षितिज का अंत नहीं होगा। द सलो कैन वी अटेन टू दोस टरेट्स where the world is one vast field, and one boundless reach of the sky. मित्रों, मैंने जिस सम्यक दर्शन की व्याख्या आप लोगों के सामने की है, वो परंपरागत सम्यक दर्शनों से अलग है। जीवन में विकास होता है, दर्शन में भी विकास होता है। इससे अधिक मेरी समय के मर्यादा में आप बात अपनी यहां बंद करूंगा, इससे अधिक नहीं कहूंगा। यावत तैलम तावत आख्यानम, ये नियम है। आप सबको नमस्कार है, धन्यवाद।